प्यारे भाई और बहनों, हमारे पास आज खुदा का नबूवत वाला, भविष्यवाणी वाला वचन है। हमारा वफादार प्रभु, अब हम प्रार्थना में हैं। अब हम आपको सादर सम्मान देते हैं और महिमा देते हैं कि आज आपने हमको इस रास्ते पर चलाया और इस रास्ते पर डाला, हे प्रभु यीशु मसीह। और ये जो सकरा रास्ता है, जो तंग रास्ता है, इस पर आप हमारी रक्षा करें, सुरक्षा करें, जिससे कि हम उन सारी बातों को छोड़ सकें और अलग रखें जो कि आपको पसंद नहीं है, जिससे कि एक दिन हम आपके सामने खड़े होकर के उन सफेद पोशाक में, सफेद कपड़ों में खड़े हो सकें। हे प्रभु, हम तो सिर्फ तेरी महिमा कर सकते हैं, तेरी प्रशंसा कर सकते हैं कि तू आज भी वैसे ही है और तू आज हमसे बात करता है, और आज भी तू हमसे बात करता है, और सिर्फ तेरे को ही, सिर्फ तेरी ही महिमा और धन्यवाद हुए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं भी भाई ब्रनम, भाई फ्रैंक, मैं भाई फ्रैंक भी आपको इस वक्त बहुत गर्म जोशी से आपका स्वागत करता हूं और संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक के लोगों का स्वागत करता हूं। और जो भी खादिम हैं, जो सेवा करने वाले भाई हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि उस परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को ऐसे ही पहुंचाएं, ऐसे ही बांटें जैसा कि वो लिखा है, बगैर किसी गलत अनुवाद के। और हम जो भाई केलर ने अभी पढ़ा, और बेशक हम इस खास समय में रह रहे, खास वक्त में रहे हैं, और हमारे खुदावन यीशु मसीह की आमद बहुत नजदीक है। और ठीक इसी प्रकार से ये जो अंत का समय चल रहा है, और हमने खुदावंत के प्रोग्राम में, उसकी योजना में, परमेश्वर की योजना में उस भाग को अच्छी तरीके से समझ सका, उन भागों को अच्छी तरह समझ लिया कि आदम से और यीशु मसीह तक 4000 साल का वक्त गुजरा, और यीशु मसीह के बाद अब 2000 साल का वक्त गुजरा, जैसा कि हमने मुकाशफा प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसके 20वें अध्याय में पढ़ते हैं कि खुदावन के 1000 साल के बादशाह के बारे में, जो यहाँ पर होने वाली है, उसके बारे में हम जानते हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि नया आसमान और नई जमीन और बनाए जाएंगे, वो आएंगे, और खुदावन के पास नजात का एक प्रोग्राम है, एक योजना है, और समय शुरू हो चुका है, और जो समय शुरू हुआ, वो वक्त शुरू हुआ, वो खत्म भी होगा, और जो हमेशा हमेशा, यानी कि जो अनंत काल है, इटर्निटी है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, ना कोई अंत है। हमारा तो ये काम है, हमारा ये यत्न है कि ये दिखाएं, क्योंकि हम पाक कलाम से ये दिखा पाएं कि अब हम इस वक्त, और अब हम समय के अंत में पहुंच चुके हैं। और ये वो आखिरी काल है, आखिरी समय है, इससे पहले कि हमारे प्रभु की आमद हो जाए। और इसलिए कि प्रभु अपने रासबाजी के काम को, धार्मिकता के काम को कामलियत की तरफ पूरा करेगा, और हम इस चीज की गवाही होंगे, और हम इस चीज की गवाही दे सकते हैं कि खुदा का काम अब पूरा हुआ। और हम ये ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि जो प्रभु ने कि हमारे उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, और मैं दोबारा आऊंगा जिससे कि मैं तुमको अपने पास ले जाऊं, जिससे कि जहां पर मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। और अभी जो पढ़ा गया वचन से, हमने खास तौर पर यह सुना, इसके ऊपर जोर देकर बताया गया कि जो नबूवत का कलाम है, भविष्यवाणी का वचन है, उसके बारे में बताया गया। और अब हमारे पास ये खास तौर पर ये इस चीज का ऐलान, इसकी शिक्षा, इसके बारे में बताया गया कि ये जो नबूवत वाला भविष्यवाणी का हिस्सा है, उसके बाद शिक्षा, और उसके बाद में जो जताने की और वचन फैलाने की बातें, और हम ये सारी बातें जो सुनते हैं, जो खुदा के कलाम को, वचन को सुनते हैं, जिससे कि हम इसका अनुभव कर सकें और अपने तैयारी को कर सकें, जिससे उस महिमा वाले दिन के लिए जिस दिन प्रभु आएगा हम अपने आप को तैयारी बख सकें। और अब हम कुछ वचन से, कलाम से कुछ आयतें पढ़ेंगे। पहली बात जरूरी है खास तौर पर कि हम खुदावन के बेटे बेटियां होने के नाते हमको चुना गया है, जिससे कि हम परमेश्वर की, खुदावन की उस जलाल और महिमा को देख सकें। और हमारे को लेपालक का वो रूप दिया गया है, लेपालक का अधिकार दिया गया है, और खुदावन ने अपने बेटे और बेटियां हमें मनुष्यों के पुत्रों पुत्रियों से अपने पुत्र और पुत्रियां बेटे बेटियां बना लिया और हमें अनंत जीवन दे दिया। अब हम पढ़ते हैं, और अब कुछ कलाम में से कुछ बातें पढ़ते हैं जो अभी पढ़ा गया, जो भाई केलर ने वचन पढ़ा, उसके अलावा अब हम और कुछ वचन पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं, हम रोमियो एक और पहली और दूसरी आयत, रोमियो एक पहली और दूसरी आयत, रोमियो एक पहली और दूसरी आयत, पौलुस को और उससे जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया, जिसकी उसने पहले से ही अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में, देखिए यहां खुदा के हर कलाम के हर वचन को खास तौर पे समझें, एक एक उसका इस पर ईमान लाएं और खुदावन का धन्यवाद करें, शुक्रगुजारी करें। और देखिए यहां पर पौलुस उस बुलाहट के बारे में बात कर रहा है जिसके लिए बुलाया गया, और उसको बताया, उसने वो ये बता सकता था कि ये बुलाहट कैसे हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, जब किस तरीके से उसको इस सेविकाई के लिए, इस खिदमतकारी के लिए बुलाया गया। और वो वाली बात जो कि जो ये बता रहा है कि वो उस कलाम को, उस आत्मिक कलाम को, जो उद्धार का कलाम है, नजात का कलाम है, जो कि खुदावन ने नबूवत करवाई थी पुराने अदनामे में अपने अपने नबियों के द्वारा, जो खुदावन ने पहले से ही कहलवा दिया था, क्या वो इतना महान नहीं, क्या वो इतना अद्भुत नहीं कि खुदावन ने उसको पहले से ही अनाउंस कर दिया और उसको उसका वादा भी पहले से ही नबियों के द्वारा, नबियों के जरिए से कर दिया और हर चीज में, और उसने बता दिया कि बाद में क्या होने वाला है और खुदावन की योजना में, खुदावन के प्रोग्राम में क्या क्या शामिल है। मैंने तो अभी पहले ही ब्रॉडकास्ट में कहा कि नए नियम में, नए अदनामे में हमें 54 नबूवतों का पूरा होना बताया गया, जो पुराने अहदनामे की थी वो सारी चीजें जो पहले से बताई गई थी, खुदावन हमारे नजात दहिंदा की पैदाइश से लेकर उसके उठाए जाने, स्वर्गारोहण तक, जी उठने के बाद उठाए जाने तक की बातें पुराने नियम में, पुराने अहदनामे में पहले से ही बताई गई, और नए नियम में भी, नए अहदनामे में भी हम जानते हैं, हम देखते हैं कि वे 54 ऐसे हवाले पाए जाते हैं जहां पर उसको साबित किया गया, उसकी गवाही दी गई और उनके बारे में बताया गया और वादे जो वादे पहले किए गए थे वो हमें दिखाया गया कि नए ऐतनामे में कैसे पूरे हुए। ये नहीं कि कोई और गवाही या कोई और समाचार, बल्कि वो सुसमाचार जो खुदावन ने, जिसका ऐलान खुदावन ने पहले से ही अपने पाक नबियों के द्वारा करा दिया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। और ये वो ये है कि जिसीलिए पुराना और नया अहदनामा आपस में एक हैं, आपस में मेल खाते हैं। हम खुदावन के बड़े हद शुक्रगुजार हैं, धन्यवादी हैं कि कुछ और बातें हम सुनते हैं। अब देखिए जो हमने वर्ड ऑफ इंट्रोडक्शन में पढ़ा भी है, देखिए अब हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 1:16 आयत, दूसरा पत्रस 1:16 को अब हम पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस 1:16, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के कुवत का, सामर्थ का, आगमन का समाचार दिया था तो वो चतुराई से गड़ी हुई कहानियां नहीं थी, वरन हमने आप ही उसके जलाल को देखा था, खुद देखा था। और देखे आई विटनेस, यहाँ पर आंखों देखे गवाह, कान से सुने हुए गवाह, उनको क्या हुआ, ये उन्होंने कैसे सुना, कैसे देखा। हमने कोई किस्से कहानियां, गड़ी हुई कहानियां नहीं बताई, हमने कोई इंसानों की बनाई हुई कहानियां नहीं बताई, पत्रस बता रहा है, पर हमने तो खुदावन के पाक कलाम, पवित्र शास्त्र में से पवित्र वचन की बातों को सुनाया। और हमने ये बिलीवर्स को, विश्वासियों को बता रहा है कि हमने उसी का प्रचार किया, इसको ग्रहण करें, इसको हासिल करें, इसको रिसीव करें, कि किस तरीके से पवित्र वचन हमको बताता है। और दूसरा पत्रस 1 और उसकी 19 ए को पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 1:19, हमारे पास नबियों का वो वचन है जो इस घटना के द्वारा दृढ़ ठहरा, जो तुम चाहते हो ये समझ कर ध्यान रखते हो कि वो एक दिया है, रोशनी है, जो अंधियारे के स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है, रोशनी देता है, जब तक पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे दिलों में ना जाग जाए। हम ये बड़े जोर से कह सकते हैं कि ये जो नबूवत का कलाम है, ये जो वचन है हमारे सामने, और प्रभु की प्रशंसा, उसके नाम को महिमा हो, कि जो पहले से ऐलान किया गया, जो बताया गया, और वो पहले उसके बारे में बताया गया, फिर उसका कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद नबियों के द्वारा, पहले नबियों के द्वारा, फिर रसूलों के द्वारा जो बताया गया और ऐलान किया गया वो 100% सेम है। और ये बड़ी अद्भुत बात है कि कोई भी ऐसी बात नहीं पाई जाती वचन में जिसमें के आपस में कोई मेल ना खाए, पर हर चीज आपस में आत्मिक तौर पर हर चीज बताई गई है और उसका ऐलान किया गया, और ये जिससे कि हम उसको सुन सकें, और आज भी वो इस चीज की गवाही देता है ये कलाम हमारे वक्त में भी, हमारे समय में। आज इतनी सारी शिक्षाएं अलग अलग टाइप की दी जा रही हैं, पर हमारे लिए तो हम तो हर चीज की गवाही और हर चीज का विश्वास बड़ी ईमानदारी के साथ, जिंदा दिली के साथ हम इस कलाम को लेकर चलते हैं। हमारे पास तो वो कलाम है, वो नबूवत का कलाम है जो कि एकदम गढ़ा हुआ है, जिसमें कोई बनावट नहीं, जिसमें कोई कहानियां नहीं, ये तो हमारी जागीर बन चुका है, हमने इसको पा लिया है, हम सिर्फ इसके बारे में बातें नहीं करती, पर ये हमारी जागीर बन चुका है, ये हमारे पास है और हमने इसे ग्रहण कर लिया, जो कि प्रभु ने अपने वचन में, अपने कलाम में पहले से ही बता दिया और आज हम उस चीज के अधिकारी भी हैं। प्रभु यीशु के साथ में हम भी उन बातों के अधिकारी हैं जिसका अधिकारी वो ठहरा, और आत्मिक तौर पर ये हमारे लिए सच्चाई बन गया है और हमारे लिए हमारे उद्धार का कारण बन गया है। और ये बातें उद्धार की जो इसमें लिखी हैं ये हमारे लिए भी वैलिड है, और अब हम इन सारी चीजों को प्राप्त भी करते हैं और विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, रिसीव भी करते हैं। और खुदावन के नाम और हमारा खुदावन जो नजात दहिंदा हमारा खुदावन है उसके द्वारा अब हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस पहला बाब और उसकी 20वीं आयत पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस 1:20 आयत को पढ़ते हैं, और तुम ये पहले से जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी या नबूवत किसी के अपने विचारधारा से या अपनी मर्जी से पूरी नहीं होती। आमीन। यहां पर भी ये भी देखिए, इसको भी दिल से लगाएं, दिल से रिसीव करें, और हमें बड़ी ईमानदारी से कहना पड़ता है, सोचना चाहिए, जितनी भी मसीही बातें हैं, बाइबल की जो बातें हैं, बाइबल के जो बातें हैं उनका उनको कई बारी अनुवाद किया जाता है, फिर अनुवाद किया जाता है अपनी मर्जी से, पर कोई भी नबूवत कोई भी भविष्यवाणी जो है वो किसी प्राइवेट तौर पर व्यक्तिगत तौर पर उसका हम अपने आप से अनुवाद या उसके हिसाब से हम अपनी शिक्षा या डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। पर जिस पे जोर दिया गया वो बात यह है कि जितनी भी भविष्यवाणियां हैं नबूवतें हैं वो अपने आप में पूरक होती हैं, वो अपने आप में पूरी होती हैं, इनका अलग तरीके से अनुवाद नहीं किया जा सकता। इनको तो अपने फुलफिलमेंट में अपने पूरे होने में कलाम के द्वारा ही समझने और सीखने की जरूरत है। और वो वादे जो जैसे कि खुदावन की पहली आमद के बारे में जो बताया गया था कि कौन उसको आएगा, जो कि एक जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द सुनाई दे रहा है, और मेरे और खुदावन के आने के लिए रास्ता तैयार कर, ये भविष्यवाणी थी। और उसने कहा था मैं अपने सेवक को मैं अपने मैसेंजर को भेजता हूँ कि वो मेरे लिए आने से पहले मेरी राह तैयार करे। और इसके लिए कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं, ये तो यशाया ने पहले से ही बता दिया था, मलाकी ने भी इसके बारे में बता दिया था, और नए नियम के अंदर नए ऐतनामे के अंदर ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, पूरक हो गई। और इनको अपना कंफर्मेशन, इनका पूरक होना साबित कर दिया गया नए ऐतनामे के अंदर। हम इसके बारे में जोर देकर बताएं कि हमारे वक्त में भी कोई भी ऐसी भविष्यवाणी या नबूत कलाम की ऐसी नहीं है, हमारे को ये इस चीज की इजाजत नहीं देती कि हम कोई व्यक्तिगत या पर्सनल अनुवाद या चिल्ड्रन या शिक्षा इस बारे में दे सकें। जो खुदावन का सच्चा खादिम है और खुदावन का सच्चा बिलीवर है वो तो इस कलाम की ओरिजिनल और खास उन बातों पर यकीन करता है, और वो खुदावन के कलाम को, खुदावन की योजना को, प्रोग्राम को पूरे होते हुए भी देखेगा। खुदावन का बहुत धन्यवाद हो। और उसने हमें बिल्कुल साफ तरीके से अपने वो वादे बताए हैं अपनी दूसरी आमद के बारे में उसने सारी बातें और सारे वादे हमें खास तौर पर सफाई से बताए हैं। और उसने ये भी बताया कि देखो मैं तुम्हें एलिया नबी को भेजूंगा, और उस वक्त और खुदावंत के महान और भयानक दिन के आने से पहले एलिया को भेजूंगा। आप देखिए अब इस समय में, इस जो उद्धार का समय जो एकदम निकट आ गया, नजदीक आ गया, जिससे कि पहले कि महान और वो भयानक दिन खुदा का आ जाए, यहां पर एक बाइबल का संदेश पहले जाना जरूरी है। और जब पत्रस इस बारे में जोर देकर कहता है कि हमारे पास एक बड़ा दृढ़ और गढ़ा हुआ वचन है, मेरे भाई और बहनों हम भी आज वही बात कहते हैं, हम भी उसी बात को दोहराते हैं, हमारे पास भी खुदावन का वो पक्का कलाम है, मजबूत कलाम है कि खुदावन ने एक खुदा ने कहा कि वो एक नबी को भेजेगा, उसने पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को नबी के की तरह भेजा था, और उसका भी प्रॉमिस था, उसका वादा था। इसी तरीके से हमारे वक्त में भी वादा किया हुआ नबी, और हम ये कई बारी और बार बार हम कई बारी इस बात को जोर देकर कहते हैं कि खुदा ने अपने उस वादे को पूरा किया, और उसने और आत्मिक तरीके से उसने भाई ब्रहनम को हमारे समय के अंदर नियुक्त किया और बुलाया, और जिससे कि ये आत्मिक कलाम, ये आत्मिक वचन, आत्मिक संदेश हमारे लिए उसने भेजा नबी के द्वारा। इसलिए क्योंकि ऐसा लिखा है, जैसा अमाल के तीसरे बाब में लिखा हुआ, जैसा लिखा है कि हमारे प्रभु का स्वर्ग में आसमानों में रहना तब तक जरूरी है, तब तक रुके रहना जरूरी है जब तक के ये जो खुदा का बोला हुआ कलाम है, उसने नबुवत जो करवाई अपने नबियों के द्वारा, और ये सारे कलाम को उसने पेश किया, जब तक ये पूरा ना हो जाए तब तक हमारा प्रभु जो है वो स्वर्ग में रुका रहता है, जब तक कि वो सारी चीजें पूरी ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, पूरक ना हो जाए। और खुदावन ने यह बताया, और उसने खुदावन ने भाई ब्रैनम को एक नबी की हैसियत से भेजा। ऐसा नहीं कि वो कोई टीचर बना के या शिक्षक बना के भेज दिया या कोई फॉर्मूला प्रीच करने वाला बना के भेज दिया, नहीं, एक नबी बना के भेजा। उसने खुदा के कलाम को, नबुवत के कलाम को उसने उस दीपदान के ऊपर रखा, और हम उस सारी बातचीत को कलाम के अनुसार से सामने रखते हैं और खुदावन के कलाम को लोगों के सामने रखते हैं। आमीन। अब हम देखिए, फिर पढ़ते हैं, देखिए कुलोसियों एक और उसकी 9 आयत, कुलोसियों एक और नौ। इसलिए जिस दिन से हमने ये सुना, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में पूरे होते जाओ। आमीन, आमीन। यहां पर देखिए, ये हमारी दुआ, आज हमारी भी ये दुआ है कि खुदावन हमारी अगुवाई करे, प्रभु हमारी अगुवाई करे कि हमारे अंदर वो आत्मिक समझ आ जाए, ऐसा प्रभु होने दे। ये हमारी प्रार्थना है। यहां पर ये नहीं कि हमारा दिमाग, हमारे दिमाग से बात नहीं करी जा रही, बल्कि हमारे हृदय से, हमारे मन से वो बात करी जा रही है। और जैसे कि नबियों ने बताया, जैसे कि वो नबी जो थे, जिनको जिनको डायरेक्ट इंस्पिरेशन मिला था खुदावन की तरफ से, पाक रूह की तरफ से उनको समझाया गया था, और जैसा हमारे प्रभु के बारे में लिखा है कि प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा प्रभु के ऊपर था, और उसने उसको, उसका अभिषेक किया, उसको एनॉइंट किया, उसका मसा किया, और इसी प्रकार से प्रेरितों पर भी, रसूलों पर भी, और वो पवित्र आत्मा से, पाक रूह से भरे हुए थे, और वो पाक रूह ने उनकी, उस पाक रूह ने उनकी अगुवाई करी, उनको समझाया और उस सच्चाई को उनके ऊपर जाहिर किया, और उन और सारे प्रभु के दिमाग में, वो सारे विश्वासी और ईमानदार लोग प्रभु के जहन में था, जिससे कि प्रभु ने वो वाली बातें उनके दिलों में भी, और सेम आत्मा, वही आत्मा, वही रूह, और वही आत्मा ने सबको ज्ञान दिया, उसी ने मुकाशफा दिया, जिससे कि वो सारी बातें और खुदावन की आत्मा के द्वारा वो पूरी की जाए, और उन सब लोगों के अंदर वो जो उसको सुनते हैं, जो उस बच्चों को सुनते हैं, और उनको उसका मुकाशफा मिलेगा, उस खुदावन के पाक कलाम का मुकाशफा मिलेगा। इसलिए ये लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आता है तो वो आकर के तुम्हारे को उस सारी सच्चाई में, पाक रूह आकर तुम्हें सारी सच्चाई में तुम्हारी लीडिंग करेगा, तुम्हें समझाएगा। आज हम इस चीज का अनुभव कर रहे हैं, इस चीज को देख पा रहे हैं अपनी जिंदगियों में। हम सारी की सारी शिक्षाओं में से बुला लिए गए, बाहर निकाल लिए गए हैं, उन सारे डिनोमिनेशंस में से, उन सारी शिक्षाओं में से प्रभु ने हमको बाहर निकाला है और उस सच्चे कलाम की ओर प्रभु हमको ले आया, वापस उस कलाम में ले आया खुदावन, जो उसने नबियों के द्वारा हमारे को लिखा क्लिक कर दिया और जो उसने पुराने और नए नियम में कलाम लिखवा कर दिया। इसलिए आज हमारी भी ये दुआ है, यही प्रार्थना है कि जो इस बात को सुन रहे हैं वो इस आत्मिक वचन की के ज्ञान को, इसके मुकाशफा को, इसके प्रकाशन को और इस आत्मिक विश्वास को प्रा सके, ग्रहण कर सके और खुदावन की जो सारी योजना, जो सारा प्रोग्राम है नजात का, उद्धार का, वो हमारे ऊपर विकसित किया जाए, हमारे ऊपर जागृत किया जाए और जिससे कि हमारा भाग, हमारा हिस्सा, हमारा सीधा सीधा हिस्सा उस योजना के अंदर में पाया जाए और हमारा प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो जिसने कि हमारे समय में इस धरती को, धरती के ऊपर इस वचन को दिया और हमने उस चीज को पा लिया जिसका प्रचार, जिसका वादा उसने हमसे, जिसका ऐलान उसने पहले से किया था, क्योंकि हम तो वादे के फर्जंद हैं और इसीलिए हम उस पर विश्वास भी करते हैं और जो खुदावन ने जो अपने वचन में जो वादे किए हम उन पर ईमान रखते हैं। हम फिर पढ़ते हैं कुलुसियों 1:14, कुलुसियों 1:14 को पढ़ते हैं, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। 14 प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो। यह सिर्फ शिक्षा के बारे में नहीं, सिखाने के बारे नहीं, बल्कि हमें इन बातों से जब हम दिल से उस पर ईमान लाते हैं तो उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें पूरा उसका पूरा छुटकारा मिलता है, छुटकारा मिलता है और क्षमा मिलती है और हमारा जोड़, हमारा रिश्ता उससे दोबारा कायम हो जाता है और उस खून के द्वारा, जो नए ऐदनामे का जो खून है, जो नई वाचा का खून है, जो हम पर और हमारे ऊपर, हमारे पापों के ऊपर जो था, लगा हुआ था उस गुनाह की जो छाप थी, वो इस खून के द्वारा हमें छुटकारा मिला है और हमारा छुटकारा हो गया वचन के द्वारा और पापों से हमें क्षमा मिली और ये बिल्कुल ऐसा हो गया, इतना साफ कर दिया गया, इतना धो दिया गया कि हमें कोई अपने अंदर गलती महसूस नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे गुनाह तो साफ किए गए जैसे हमने कभी नहीं किए और हम भी ये कह सकते हैं कि पौलुस की तरह हम कह सकते हैं कि जो यीशु मसीह में है वो एक नया फर्जंद है, वो एक नया जीवन बन जाता है, नया मनुष्य बन जाता है और पुरानी बातें जाती रहीं और अब नया जीवन शुरू हो चुका, सब कुछ नया हो गया है। हम प्रभु के बड़े धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार हैं इतने इस प्रकार की शिक्षा के लिए, इस प्रकार के वचन के लिए, कलाम के लिए, जो हमें अपने दिलों से लगा कर रखना चाहिए और दिल से उसको मानना चाहिए और ईमान रखना चाहिए जिससे कि हम उसके अंदर और गहराई से पाए जाएं और हम इसको प्राप्त करें और अपने छुटकारे को पालें। और प्रभु ने बड़े जोर से चिल्लाकर सलीब से कहा, क्रूस से कहा कि ये सब पूरा हुआ। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो इस बात के लिए जो उसने कहा। कुलुसियों 1, अब हम उसकी 22वीं आयत को पढ़ते हैं। अब उसने अपनी ही शारीरिक देह में मृत्यु के बाद तुम्हारा भी मेल कर लिया ताकि तुम्हें अपने सामने पाक और निष्कलंक, बेदाग और बेऐब, निर्दोष बनाकर हाजिर कर सके। आमीन। देखिए कितना सामर्थी, कितने कुव्वत वाला वचन है, ये कितनी जबरदस्त शिक्षा और बलाहट है और पौलुस ये कह सकता था, इसको बता सका, पौलुस इसका बयान कर सका कि हमारा तो पूरा का पूरा उद्धार हो गया, संपूर्ण उद्धार हो गया और हमको निष्कलंक और निर्दोष यानी बेदाग और बेऐब खुदा उनके सामने पेश किया। और जो पुरानी बातें थी वो पुरानी बातें अब नहीं रही, और जो पुरानी बातें थी ये पुरानी बातें अब नहीं रही। अब तो जो खुदावन ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए किया अब सिर्फ वही हमारे ऊपर अप्लाई होता है, वही लागू होता है, और वो ये है। इसलिए हम अपने प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि ये आयत दोबारा पढ़ी जाए, यानी कि कलोसियंस 1:22 दोबारा पढ़ी जाए। प्लीज इसको आप ग्रहण करें, इसको आप सीखें, समझें और इसे माने और इसे रिसीव करें और इसको मान ले और ग्रहण कर ले कि वो वचन जो है ये अब हम दोबारा पढ़ रहे हैं। कलोसी 1:22 हम दोबारा पढ़ रहे हैं। अब हमने उसकी शारीरिक देह में मौत के द्वारा यानी जिस्म में उसकी मौत के द्वारा तुम्हारा मेल कर लिया ताकि तुम्हें उसके सामने पाक और बेदाग और बेऐब बनाकर उपस्थित कर सकें, यानी कि प्रेस प्लेस कर सकें। अब विश्वास में इस बात को माने और कहे, ये प्रार्थना खुद भी बोलें, हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने अपना खून मेरे लिए बहाया ताकि उससे तूने मेरा अपने से उस देह के उस लहू के द्वारा मेरा मेल करा लिया, जिससे कि मैं बेदाग और बेऐब तेरे सामने खड़ा हो सकूं। हमारा सेवियर, हमारा नजात दहिंदा इस जिस्म में आया, वो ऐसे जिस्म में आया, आकर के उसने अपना खून बहाया और उस वो जो आत्मिक लहू था वो उसने बहाया और उसने हमारा छुटकारा किया और उसने हमारे सारे के सारे गुनाह गलतियों को उसने माफ किया। और हमको इसलिए उसने ऐसा किया कि हम बेदाग और बेऐब उसके सामने पेश किए जाएं, उसके सामने हम खड़े हो सकें, खुदावन के सामने हम छुटकारा पाए हुए पाक लोग बन करके पेश किए जाएं, जिनके गुनाह माफ किए गए हैं और प्रभु के बेटे और बेटियां उसकी संतान होकर पेश किए। इसके लिए हम बड़े आभारी हैं। आगे पढ़ते हैं कुलोशियों 1:15 आयत को पढ़ते हैं। कुलोशियों 1:15, वो तो अदृश्य यानी ना दिखने वाले खुदावन का रूप है, उसकी इमेज है और सारी सृष्टि में पहला होता है, सारी कायनात में पहला है। हमारा प्रभु, हमारा जो छुटकारा देने वाला नजात दहिंदा है, वो तो सब कुछ है, सर्व है, वो सर्वे सर्वा है और वो तो पहलौटा है। पर हम तो उस पहलौटे की कलीसियां हैं, जैसा ये कितना साफ साफ बताया गया, जो से इब्रानियों में साफ साफ बताया गया कि हम वो जो हम सारे भाइयों में वो पहला उठा है और हमने उस बर्थ राइट को और जीवन के अधिकार को पाया है और हम भी नए सिरे से पैदा हुए हैं। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस बात के लिए, इस वचन के लिए। हमारे प्रभु ने सिर्फ यही नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि हमें उसने खास तौर पे कहा कि हमें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, वरना यही नहीं कहा, सिर्फ उसने ऐसा दिखाकर दिखाया, पर उसने ये भी बताया कि हमें पैदा कैसे होना है। इस बात को हमें किस प्रकार से ग्रहण करना है, और जैसा हमारे प्रभु के साथ था और वो जो हमारे साथ, ये जो वचन है ये देहधारी हुआ, ये हमारे पास आया और वो इकलौता पहलौटा बन करके हमारे पास आया और उसने अपना हमारे को ये अधिकार दिया, ये जीवन का लेपालक होने का अधिकार दिया, जिससे कि हम खुद हम उसके भाई कहलाए प्रभु के, और हमारे प्रभु यीशु को सारा धन्यवाद, सादा आदर और सम्मान मिले। मेरे भाई और बहनों, याद रखें, इसको ग्रहण करें, इसको मान लें, इसको रिसीव कर लें। ये वो आत्मिक सच्चाई है जो कि प्रभु का हम जिसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब लिखा है, अब देखें, अब हम रोमियो 8 और उसकी 29 आयत, रोमियो 8 और 29। रोमियो 8:29 में लिखा, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी, और उसके जिससे कि हम उसके बेटे के स्वरूप हो जाएं, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। प्रभु जो है वो भाइयों में पहलौटा ठहरे। आमीन। अब हम और क्या प्रभु कर सकता था हमारे लिए, उसने सब कुछ कर दिया। और मैं फिर बार बार कहता हूं, मैं बार बार जोर देकर कहता हूं, ये सारे वचन, इन आयतों को बार बार पढ़ें, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमको खुदावन ने पहले से ही ठहराया और इस चीज को कामिल बता दिया कि हम खुदावन जो हमारा खुदावन है उसके रूप में, उसके स्वरूप में, कि हमारे जो जिस्म है ये बदल जाएं और उस आत्मिक बॉडी में बदल जाएं, तब हम उसके साथ उस महिमा में पाए जाएंगे। तो हम ये नहीं सोचेंगे कि यहां जमीन पे क्या हुआ, सिर्फ हम इस बात को जानेंगे कि खुदावंद ने हमारे लिए क्या किया। हम फिर एक बारी कहते हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा, कि जिनको उसने पहले से जाना उसने उनको पहले से ठहरा भी दिया, और उसने हमें पहले से ठहरा दिया जिससे कि हम उसके रूप में, उसके स्वरूप में पाए जाएं। और ये जरूर होगा, और ये जी उठने के वक्त होगा। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो हर बात के लिए जो पहले से बता दिया गया, और यहां ये पहले से बता दिया गया कि खुदावन ने हमें ये पहले से बता दिया अपने पाक कलाम में। इसलिए ना सिर्फ कि खुदावन वापस आएगा, बल्कि उससे पहले क्या होगा ये उसने बता दिया, और तब क्या होगा जब प्रभु आएगा, तब क्या होगा, ये सारी बात उसने खुलासा करके बता दिया कि जो यीशु में जो मर गए थे, उसके नाम में जो मरे थे, वो जी उठेंगे, और हम जो उस वक्त जिंदा रहेंगे, हम मारे भी जिस्म बदल दिए जाएंगे, और एक ही पलक झपकते हुए एक ही क्षण में ये सब हो जाएगा, और हम एक साथ प्रभु में ऊपर उठा लिए जाएंगे बादलों में। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि खुदावन की इस योजना का धन्यवाद करें, शुक्रगुजारी रखें, कि बहुत सारी बातें हैं इस वक्त, अभी दाएं और बाएं बहुत सारी बातें हमारे समय में हो रही हैं। हम जानते हैं, हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अंत का समय है, और जो प्रभु ने बताया था, खास तौर पर वो बातें हैं जो मत्ती 24 में उसने कहा था, जो ये हमारे सामने इस वक्त बिल्कुल चश्मदीद दिखाई दे रहा है कि लड़ाइयां और बीमारियां, विपत्तियां और बहुत सारी बातें जो वहां लिखी है वो हमारे सामने हो रही हैं, और देखिए उत्तेजना, ये सारी चीजें हमारे सामने, और बहुत सारे लोग जो परेशान हैं, विपत्तियों में हैं, ये वो परिस्थितियां हैं जो हमारे सामने होने के लिए बताई गई थी। प्रभु के आने के पहले ये सारा बताया गया था कि ऐसा होना है, पर इनका होना जरूरी है जिससे कि खुदा का कलाम जो है वो पूरा हो सके, पूर्ण हो सके और कामिल हो सके। और उसने कहा, जब तुम ये बातें होते हुए देखो तो अपने सिरों को ऊपर उठाओ, ऊपर ऊंचा उठाओ, जिससे कि तुमको ये पता चल जाए कि अब तुम्हारी नजात, तुम्हारे उद्धार का काम बिल्कुल नजदीक है। प्रभु हमारी आंखों को खोले और हमारे कानों को खोले और हमारी समझ को खोले, और फिर ये सारा की सारा उन बातों के बारे में जैसे मत्ती 24 में बताया गया, और तीन सवाल जो पूछे गए प्रभु से, और प्रभु से तीन सवाल पूछे गए, ये कब होगा, यानी कि मंदिर कब बनेगा, वो हैकल कब बनेगी, ये नहीं, ये, और जब ये भी बता दिया था कि एक पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा, और तेरी आमद कैसे होगी, और फिर और ये समय का अंत कब होगा, ये तीन सवाल प्रभु से पूछे गए, और प्रभु ने तीनों सवालों का जवाब दिया था। और सबसे बड़ी बात, खास बात हमारे लिए है, हमारे प्रभु ने बताया, उसने खास तौर जोर देकर कहा 14 आयत के अंदर, ये बताया कि ये जो संदेश है, ये जो सुसमाचार है, ये जो खुशखबरी है, ये उद्धार का वचन जो है, ये सारे संसार में, सारे देशों में गवाही के तौर पर पेश किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा, और इसके बाद अंत आएगा, इसके बाद खात्मा होगा। और आप सब जो इस अंत के समय को, के संदेश को बिलीव करते हैं, और भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री को जानते हैं कि खुदावन ने किस तरीके से कलाम को, खुदावन ने उसके सामने खोला और उसको क्या बुलाहट दी, और उसने उस क्या बुलाहट उसको दी, और किस तरीके से खुदावन ने, और उसके 1000 से भी ऊपर सरमंस में, वचनों में उसने इस चीज को बताया, और उसने इन सारी चीजों को के बारे में बताया कि ये सारी चीजें जो खुदावन ने बताई थी वो हमारे समय में हमने होते हुए देखी, और प्रभु का वचन, खुदा का कलाम हमारे सामने कामिल हुआ और हमारे सामने प्रकट हुआ, और हमारी आत्मा में, हमारी देह में, और हमारी रूह के अंदर, हमारी जान के अंदर समा गया, और हमारे सामने ये सब पूरा हुआ, जैसे प्रभु ने 14 और 12 के अंदर कहा, यूहन्ना 14:12 में कहा, ये जो काम मैंने किए हैं तुम भी ये काम करोगे और इनसे भी ज्यादा काम करोगे, और मैं तो प्रभु के अपने पिता के पास जाता हूँ, और सब कुछ हो चुका, हमारे समय में हो चुका, हम जानते हैं, और मैं प्रभु का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं इन चीजों का आंखों देखा गवाह हूँ और कान से सुने हुए का विटना का गवाह हूँ कि 10 साल तक मैंने भाई ब्रैनम की उस सेविकाई को, खिदमत को जाना, मैंने उन सारी चीजों की व्यक्तिगत तौर पे, शख्सी तौर पर मैं गवाही दे सकता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे अपना फजल दिया, अनुग्रह दिया, और इस बात का खास तौर पे जो हम जोर देकर यहाँ कह रहे हैं कि ये जो सल्वेशन का डिवाइन मैसेज है, आत्मिक वचन जो है, ये सारी बाइबल की शिक्षाएं, और जैसे जैसे खुदावन के बारे में, बैप्टिज्म के बारे में, लॉर्ड सफर के बारे में, और पाप कहां से आया, खुदावन ने सारी की सारी बातें कलाम के अनुसार, वचन के अनुसार, भाई ब्रैनम की सेविकाई के द्वारा बता दिया, और ये कोई सिखाने वाले शिक्षक थे नहीं, वो सुधार करने वाले नहीं थे, वो तो खुदा की तरफ से भेजे हुए एक मनुष्य थे, एक इंसान थे, और खुदा ने उनको नबी के तौर पर हमारे सामने पेश किया, और वो नबी थे, और उन्होंने ये बताया कि खुदावन का जो कलाम है, कि खुदा का जो कलाम है उसको लेकर वो हमारे सामने आए, और अब हमारे सामने ये अवसर है, ये मौका है कि हम इस कलाम को बाइबल के अनुसार सारी दुनिया में, जो खुदावन ने हमको दिया, और उस जो खुदावन ने सबको नया करके हमें दे दिया, भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री के द्वारा जो उसने सब कुछ हमारे पर खुलासा करके सफाई से समझा दिया कि पुराने अदनामे में और नए अदनामे में क्या क्या बताया गया और कैसा किया, जो नबियों ने पुराने अदनामे में बोला, रसूलों ने नए अदनामे में बोला, ये सारी बातें और उन रसूलों के माल सब हमारे सामने उस दीपदान पर, यानी लैंप स्टैंड पर, उसकी लाइट में सामने रख दिया गया, और ये सारा कुछ जो अब हो रहा है हमारे सामने, आज जो मसीह जगत में, मसीह संसार में जो चल रहा है, और वहां पर वो पानी 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 में हाथ डुबो करके और तीन बारी माथे पर पानी लगा देते हैं बपतिस्मे के तौर पर, पानी का बपतिस्मा और पानी का बपतिस्मा और जो जो आत्मा का बपतिस्मा है वो एक साथ है। और प्रभु ने कहा था कि जाओ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करे उसका उद्धार नहीं होगा। और फिर पहला सरमन आता है पतरस का, और उसने कहा कि तौबा करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, खुदावन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो तौबा के बाद। और इसलिए जिससे कि इस बात का हमें कंफर्मेशन हो जाए, और ये दोनों बातें एक साथ हैं, पर सब कुछ बदल दिया गया है और अलग से एक गॉस्पल प्रीच किया जा रहा है। और पौलुस ने कहा था, और जिसको खुदावन की तरफ से बुलाहट हुई थी, उसने गलतियों के पहले बाब में ये कहा गया था कि अगर कोई आकर कोई और सुसमाचार सुनाए तो उसको श्राप मिले, उसको दंडित होए, वो कर्ष में जाए, अगर कोई और गॉस्पल कोई प्रीच करे तो उसको शाप लगे। अब देखिए, अब हम क्या कह सकते हैं कि वही सुसमाचार जो पौलुस ने बताया, उन्होंने उसको बदल दिया और उन्होंने अपनी अपनी शिक्षाएं और क्रीड्स और डॉक्ट्रिन ला करके प्रचार करना शुरू कर दिया। इसलिए यहाँ पर कितनी चेतावनी उनको दी जा रही है कि वार्निंग दी जा रही है कि खुदावन ने अपने कलाम में बता दिया, और जो मुझ पर ईमान लाता है जैसा कि कलाम ने कहा, हमेशा कहता है, तब वो वापस कलाम में जाता। अब हम पढ़ते हैं एक और आयत, पढ़ते हैं मत्ती 12 बाब और 50वीं आयत, मत्ती 12:15। मत्ती 12:15 में लिखा है, और चौकस रहो, हर प्रकार से लोभ से बचा कर रखो, क्योंकि किसी और का जीवन उसकी संपत्ति से नहीं होता। उसने कहा, जैसे तेरी इच्छा आसमान पर पूरी होती, जमीन पर भी पूरी हो। अपने दिल पर हाथ रखें और कहें और दुआ करें, ये डायरेक्ट दुआ करें, खुदा से दुआ करें, उसके सामने प्रार्थना करें कि मेरे खुदावन, तेरी इच्छा तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, मुझ पर पूरी हो, क्योंकि जो खुदावन की इच्छा को करता है, जो खुदावन की मर्जी पर चलता है, वही खुदावन में मान्यता पाता है, खुदावन उसी को ग्रहण करता है, उसी को एक्सेप्ट करता है। और देखिए जो उसके कलाम में लिखा गया, हम खुदावन का धन्यवाद करें कि अब हम आज एक ऐसे वक्त में रहते हैं जहां पर के अलगाव का वक्त है। खुदावन हमें उन लोगों में से वापस बुला रहा है और उन अलग अलग शिक्षाओं से, उन धर्मों में से वापस बुला रहा है, अपने कलाम में वापस बुला रहा है, और ये हम खुदावन की तरफ वापस जा रहे हैं, जिससे कि हम एक ही ईमान हमें रसूलों के द्वारा दिया गया, संतों के द्वारा दिया गया, प्रभु के वचन में। एक और वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, और कोलोसियों 1:18 और यहां लिखा है कि वही दे और कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौटा है, जिससे कि वह सब बातों में प्रधान ठहरे। हम इसको आमीन और हैलेलुया कहते हैं इस कलाम के लिए। खुदावन बड़ा वफादार खुदा है और हमने इस बात को जाना और माना है और इस बात को मान लिया है कि उसका कलाम क्या कहता है और उस खुदावन के सारे कलाम को जो नजात का कलाम उसने हमारे लिए ठहराया हमने मान लिया है और हम सिर्फ रूह और सच्चाई में उसकी परस्तिश करते हैं उसकी आराधना करते हैं। और मैं पूछता हूं कि सारे हम जरूर पढ़ें मरकुस 7:7 को पढ़ें कि मैं चाहता हूं कि आयत पढ़ी जाए मरकुस 7:7 अब देखिए अब हम खात्मे पर पहुंचते हैं शायद के साथ में मरकुस 7 के साथ और ये इस चीज से बड़ा दर्द लगता है इस बात से पर प्रभु जानता है। प्रभु ने कह दिया कि वो व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं व्यर्थ में वो फालतू में मेरी उपासना करते हैं वो ठीक से उपासना नहीं करते क्योंकि वो मनुष्यों की आज्ञाओं को सिखाते हैं क्योंकि वो इंसानों की टीचिंग को सिखाते हैं उन्होंने जो मनुष्यों की शिक्षा है उसको उन्होंने अपनी शिक्षा बना लिया और ये बिल्कुल सच्चाई है। और देखिए ये सारे धर्मों में ये बताया जा रहा ये सारे धर्मों में सारी शिक्षाओं में सारे डिनोमिनेशन में ये बात लागू होती है कि उन्होंने अपने अपने डॉक्ट्रिन अपनी अपनी शिक्षाएं बना ली हैं और उन्होंने ये बना लिया है और उन्होंने सारी उन्होंने जो प्रभु की दुआएं और सारी दुआएं जो उन्होंने बना ली है वो सब बेकार हैं क्योंकि प्रभु ने कह दिया कि वो व्यर्थ में वो फालतू में वो बगैर मतलब के मेरी उपासना और परस्तिश करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं। और अब हम ये कहना चाहते हैं अपने खुदावन की उस खास बात से कि जो सच्चे ईमानदार हैं जो उसकी परस्तिश करने वाले हैं वो सच्चाई में और रूह में होकर उसकी परस्तिश करते हैं नो अपने बनाए हुए शिक्षाओं पर नहीं दुनिया के बनाए हुए शिक्षाओं और विश्वासों पर नहीं और दोबारा नहीं। बाद वो कह रहा है बार बार कि वो बेकार में मेरी उपासना करते हैं और मेरी परस्तिश करते हैं और फिर इसको इससे 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 ठोकर ना खाएं पर मैं ये बता रहा हूं पर अगर प्रभु को ये कहना था सारी कलीसियाओं को सारे चर्चेस को कहना था और सारे मसीह संस्थाओं को ये कहना था बेकार में तुम मेरी उपासना करते हो और प्रभु हमें ये फजल बख्शे कि अब हम सब जो भी हमने सुना आज और पहला पत्रस से उसके पहले बाप की जैसा शुरू में पढ़ा उसके पहले जो हमने पढ़ा और उसके बाद जो हमने पढ़ा और वो सारी बातें जो हमने पढ़ी जिससे कि खुदावन की परस्तिश हम आत्मा और सच्चाई में कर सके जिससे कि हमारी दुआएं खुदा के सामने पहुंच सकें उसके सिंहासन पर पहुंच सकें और कामिल हो सकें वही एक वाहिद खुदा उसी को सारी महिमा और जलाल और प्रशंसा और आदर मिले और हम सबको इस चीज में आशीष मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया आमीन।
Thank you.